एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारे समय के शायद सबसे बड़े और सबसे बेचैन करने वाले सवालों में से एक उठाती है।
बिल्कुल। और सवाल भी क्या है? क्या हम इंसान पृथ्वी के इतिहास में जो ये छठा बड़ा विनाश हो रहा है, क्या हम ही उसके कारण बन रहे हैं?
हाँ, यही सवाल। और इसे बहुत गहराई से और क्या कहूँ सबूतों के साथ उठाया है एलिजाबेथ कोलबर्ट ने अपनी किताब द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन एन अननेचुरल हिस्ट्री में।
इसे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है।
छठा महाविनाश, एक अप्राकृतिक इतिहास।
टाइटल ही देखिए, अप्राकृतिक।
सही। आजकल क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, मतलब जैव विविधता का नुकसान, इन सब पर बातें तो खूब होती हैं।
हाँ, सुनते तो रहते हैं।
लेकिन ये किताब इन सबको एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक फ्रेम में रखती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि भाई फला जानवर कम हो रहा है।
अच्छा,
ये पूछते हैं कि क्या हम इंसान ही एक ऐसी भूवैज्ञानिक ताकत बन गए हैं जो धरती के पूरे सिस्टम को, मतलब उसके काम करने के तरीके को ही बदल रही है।
ये तो बड़ा सवाल है। तो ये किताब आज इतनी जरूरी क्यों लगती है?
मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये हमें एक तरह से आईना दिखाती है। ये बताती है कि हमारे रोज के काम, हमारी तरक्की, हमारा रहना सहना,
हाँ,
वो अनजाने में ही सही पर इस ग्रह पर जीवन के भविष्य को कैसे तय कर रहा है।
तो चलिए फिर इस किताब की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये एलिजाबेथ कोलबर्ट, ये हैं कौन? क्या बैकग्राउंड है इनका?
हाँ, ये जानना जरूरी है। वो कोई, जैसे मैंने कहा, बायोलॉजिस्ट या जीवाश्म विज्ञानी नहीं है।
अच्छा,
वो द न्यूयॉर्कर मैगजीन की एक बहुत जानी मानी पत्रकार और राइटर हैं।
तो फिर उनकी खासियत क्या है इस विषय पर लिखने की?
उनकी खासियत यही है, वो मुश्किल वैज्ञानिक टॉपिक लेती हैं, उन पर जबरदस्त रिसर्च करती हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट से मिलती हैं, उनके साथ फील्ड में जाती हैं।
मतलब प्रैक्टिकल अनुभव लेती है।
बिल्कुल। और फिर उस सारी जानकारी को एक कहानी की तरह पिरो देती हैं, ऐसी कहानी जिसे हम जैसे आम पाठक आसानी से समझ सकें और महसूस कर सकें।
हाँ, ये हुनर है विज्ञान को लैब से बाहर निकालना। उनकी एक और किताब थी शायद क्लाइमेट चेंज पर।
हाँ, फील्ड नोट्स फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफी। उसने उन्हें क्लाइमेट चेंज पर एक अहम आवाज बनाया था। और इस किताब छठा महाविनाश के लिए तो उन्होंने सचमुच पूरी दुनिया घूमी, पनामा के जंगलों से।
कहाँ कहाँ गई वो?
पनामा के जंगल, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, अमेजन के वर्षावन, सुमात्रा में गैंडों को बचाने के जो सेंटर्स है वहाँ, मतलब जहाँ जहाँ प्रजातियाँ खतरे में हैं या जहाँ वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, वो वहाँ पहुँची।
और उनका लिखने का अंदाज कैसा है? क्या वो एक्टिविस्ट की तरह लिखती हैं?
नहीं, एक्टिविस्ट वाला नहीं, उनका अंदाज एक खोजी पत्रकार का है। वो सबूत सामने रखती हैं, वैज्ञानिकों को काम करते हुए देखती हैं, उनके इंटरव्यू लेती हैं।
तथ्यों पर आधारित।
हाँ, और फिर वो अलग अलग फील्ड्स को जोड़ती हैं, फॉसिल्स की स्टडी, समुद्री जीव विज्ञान, जेनेटिक्स, भूविज्ञान, इन सबको मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। वो सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे और क्यों हो रहा है उसकी तह तक जाती हैं।
समझ गया। तो अब आते हैं किताब पर।
जी,
इसका सार क्या है? मतलब ये किताब असल में कहना क्या चाहती है?
देखिए, ये किताब एक तरह का सफर है। इसमें साइंस की हिस्ट्री है, जमीनी रिपोर्टिंग है और गहरे दार्शनिक सवाल भी हैं। लेकिन इसका जो सीधा सा मकसद है वो है पाठक को यह समझाना कि पृथ्वी पर इस वक्त जो प्रजातियों के गायब होने की रफ्तार है,
हाँ,
वो सामान्य नहीं है, वो बहुत तेज है। ये एक बड़े पैमाने का विनाश है जो अभी इसी वक्त हो रहा है।
और किताब का जो मुख्य तर्क है वो क्या है?
मुख्य तर्क ये है, और यही चौंकाने वाली बात है, कि हमारी गतिविधियां, मतलब इंसानों की गतिविधियां,
जैसे
जैसे हम जो इतनी भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जिससे क्लाइमेट बदल रहा है, समुद्र का पानी एसिडिक हो रहा है,
ओशन एसिडिफिकेशन। हाँ
हाँ, और जैसे हम जंगल काट रहे हैं, खेती और शहरों के लिए जमीन ले रहे हैं, मतलब जानवरों के घर छीन रहे हैं।
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।
बिल्कुल। और तीसरा, जिस तरह हमारे जहाज़ों और प्लेन से जीव जंतु, पौधे, बीमारियाँ, एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंच रहे हैं और वहां की लोकल प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं।
इन्वेसिव स्पीशीज।
हाँ, ये सब मिलकर पृथ्वी के इकोसिस्टम को इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि प्रजातियों के लुप्त होने की जो दर है, जो रेट है, वो अब पिछले 5 महाविनाशों के बराबर पहुंच रही है या शायद उससे भी ज्यादा तेज हो सकती है।
बाप रे, पिछले 5 महाविनाशों के बराबर।
हाँ,
और सबसे बड़ी बात क्या है?
क्या पिछली बार जैसे जब डायनासोर खत्म हुए तो वजह कोई बाहर की थी, एक एस्टेरॉयड टकराया था।
हाँ,
उससे पहले कभी ज्वालामुखी फटे थे, कभी बर्फ का युग आया था,
प्राकृतिक कारण थे।
हाँ, लेकिन इस बार कारण हम इंसान हैं। इसीलिए कोलबर्ट इसे अप्राकृतिक इतिहास कहती हैं। ये प्रकृति का अपना चक्र नहीं है, यह हमारे कामों का नतीजा है।
ये तो सच में सोचने वाली बात है।
और किताब हमें समय और जगह दोनों में घुमाती है। एक तरफ हम पनामा के मेंढकों को देखते हैं,
हाँ,
तो दूसरी तरफ हम 19वीं सदी के फ्रांस में पहुंच जाते हैं, जॉर्ज कुविये के पास, ये समझने के लिए कि ये विलुप्ति मतलब एक्सटिंक्शन का आइडिया ही कैसे बना।
आपको पता, वैज्ञानिकों को ये मानने में सदियां लग गई कि प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती हैं।
अच्छा, पहले ये मानते ही नहीं थे?
हाँ,
पहले लगता था कि ईश्वर ने जो बना दिया वो हमेशा रहेगा।
हाँ, और फिर वो आज की हकीकत दिखाती हैं, कोरल रीफ, जंगल, जानवर।
बिल्कुल, ये असल में एंथ्रोपोसीन की कहानी है, वो नया भूवैज्ञानिक युग जिसमें कहते हैं कि इंसान ही पृथ्वी पर सबसे बड़ी ताकत बन गया है।
ठीक है, तो चलिए किताब की कुछ खास हिस्सों या उदाहरणों पर बात करते हैं। वो कैसे अपनी बात को साबित करती हैं?
हाँ, वो कई केस स्टडीज लेती हैं। शुरुआत होती है पनामा के सुनहरे मेंढकों से, पनामेनियन गोल्डन फ्रॉग्स।
अच्छा,
बहुत सुंदर चमकीले मेंढक थे ये, लेकिन अब जंगल में लगभग दिखते ही नहीं।
क्यों, क्या हुआ उनको?
एक फंगस की वजह से, उसे काइट्रेट फंगस या बीडी कहते हैं। ये फंगस दुनिया भर में मेंढक और उनके जैसे जीवों एम्फीबियंस को मार रहा है।
और ये फैला कैसे?
काफी हद तक इंसानी गतिविधियों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये मेंढक एक तरह की चेतावनी है, जैसे पुराने जमाने में कोयले की खान में कैनरी चिड़िया होती थी ना।
हाँ, कि खतरा है।
बिल्कुल, फिर वो हमें इतिहास में ले जाती हैं, जॉर्ज कुवे के पास फ्रांस में 19वीं सदी की शुरुआत में,
जिन्होंने एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया।
हाँ, उन्होंने ही मैमथ और मैस्टोडॉन जैसे पुराने हाथियों के फॉसिल्स का अध्ययन करके ये साबित किया कि ऐसी प्रजातियां थीं जो अब नहीं है। ये उस समय बहुत बड़ा विचार था। उन्होंने ही विलुप्ति को वैज्ञानिक तौर पर स्थापित किया।
और इसके बाद?
इसके बाद वो ग्रेट ऑक पक्षी की कहानी बताती है। ये अटलांटिक महासागर का एक बड़ा न उड़ सकने वाला पक्षी था, पेंगुइन जैसा।
अच्छा,
इंसानों ने उसका इतना शिकार किया, मांस, अंडे, पंख सब के लिए, कि 19वीं सदी के बीच तक वो पूरी तरह खत्म हो गया।
अरे,
ये दिखाता है कि इंसानों द्वारा प्रजातियों का विनाश कोई नई चीज नहीं है, बस अब हमारा असर और हमारी क्षमता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और डायनासोर वाले महाविनाश का भी जिक्र है।
पहले हुआ था, कोलबर्ट बताती हैं कि जब वो एस्ट्रॉइड टकराया तो सिर्फ जमीन पर तबाही नहीं हुई।
तो क्या हुआ था?
समुद्रों के पानी में भी बहुत तेजी से एसिडिटी बढ़ गई थी, ओशन एसिडिफिकेशन। इससे एमेनाइट्स जैसे बहुत सारे समुद्री जीव, जिनके खोल कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, वो एक तरह से घुल है, खत्म हो गए। और ये आज के लिए चेतावनी है।
बिल्कुल,
क्योंकि हम जो CO2 हवा में छोड़ रहे हैं गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, वो समुद्र में जा रही है और पानी को फिर से एसिडिक बना रही है।
हाँ, ये तो सुना है।
कोलबर्ट इटली के पास एक ज्वालामुखी द्वीप कैस्टेलो अरागोनीस का जिक्र करती है। वहां समुद्र में नेचुरली CO2 गैस निकलती है।
अच्छा,
उस जगह जाकर देखने पर पता चलता है कि भविष्य के एसिडिक समुद्र कैसे दिखेंगे। ज्यादातर जीव गायब, बस कुछ काई और बहुत ही सख्त जान वाले जीव बचते हैं। ये एक डरावनी झलक है।
सच में?
ये तो समुद्र की बात हुई,
जमीन पर क्या असर हो रहा है?
जमीन पर वो अमेज़न के वर्षावन में चल रहे एक बहुत लंबे प्रयोग का जिक्र करती हैं, बायोलॉजिकल डायनामिक्स ऑफ फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स प्रोजेक्ट।
ये क्या है?
ये दशकों से चल रहा प्रयोग है। इसमें देखा गया है कि जब हम बड़े जंगल को खेती या सड़कों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं,
हाँ,
तो क्या होता है, नतीजा ये है कि जंगल का एक छोटा टुकड़ा, भले ही उसे आप सुरक्षित रखें, वो उतनी सारी प्रजातियों को नहीं पाल पाता जितना एक बड़ा जुड़ा हुआ जंगल। धीरे धीरे उन टुकड़ों से प्रजातियां खत्म होने लगती हैं।
यानी जंगल को काटने नहीं, टुकड़ों में बांटना भी खतरनाक है।
बिल्कुल, और इसी तरह क्लाइमेट चेंज का असर है। गर्मी बढ़ने से पहाड़ों पर रहने वाले जानवर और ऊपर ठंडी जगह की तरफ जा रहे हैं।
हाँ, ये भी सुना है।
लेकिन पहाड़ तो ऊपर जाके पतले होते जाते हैं, उनकी रहने की जगह सिकुड़ती जाती है। कोलबर्ट इसे कहती हैं सूखी जमीन पर द्वीप,
आइलैंड्स ऑन ड्राई लैंड।
आखिर में उनके पास जाने को कोई जगह ही नहीं बचती,
जैसे उनका घर छोटा होता जा रहा है
और अंत में खत्म हो जाएगा।
हाँ।
फिर वो एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया देती हैं, न्यू पैंजिया।
न्यू पैंजिया? पैंजिया तो वो पुराना सुपर कॉन्टिनेंट था ना?
हाँ, जब सारे महाद्वीप जुड़े थे। कोलबर्ट कहती हैं कि आज इंसानों ने अपने जहाजों, प्लेनों, व्यापार से दुनिया को फिर से एक तरह से जोड़ दिया है, लेकिन बायोलॉजिकली।
मतलब
पौधे, जानवर, कीड़े, बीमारियां, सब अनजाने में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। इन्हें इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं।
अच्छा, जो बाहर से आके फैल जाते हैं।
हाँ, और ये नई जगह जाकर वहाँ की लोकल प्रजातियों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वहाँ उनका कोई प्राकृतिक शिकारी या कंट्रोल करने वाला नहीं होता।
इसका कोई उदाहरण दिया है उन्होंने?
हाँ, एक बहुत भयानक उदाहरण है, व्हाइट नोज सिंड्रोम। ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है। माना जाता है कि ये यूरोप से नॉर्थ अमेरिका आई
और
वहां इसने चमगादड़ों की करोड़ों की आबादी खत्म कर दी है। सोचिए, एक छोटी सी फंगस शायद किसी टूरिस्ट के जूते से चिपक कर आ गई हो।
ओह, ये तो वाकई खतरनाक है। हमारे यहाँ भी तो हैं ऐसी मिसालें, जैसे लैंटाना या जलकुंभी।
बिल्कुल। और आखिर में वो सुमात्रा के गैंडो जैसे बड़े शानदार जानवरों की कहानी बताती हैं।
उनकी क्या हालत है?
बहुत बुरी। शायद 80 से भी कम बचे हैं जंगल में। वैज्ञानिक उन्हें बचाने के लिए लैब में बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, IVF जैसी तकनीकों से।
लेकिन
ये कोशिशें भी बहुत मुश्किल हैं, और कामयाब होंगी या नहीं पता नहीं, खासकर जब उनका घर यानी जंगल ही सिकुड़ता जा रहा है। और फिर वो नियांडथल मानवों के बारे में भी सोचती हैं, वो भी तो विलुप्त हो गए हमारे आने के बाद।
हाँ।
तो वो पूछती हैं कि क्या हम होमो सेपियंस में ही कुछ ऐसा है, कोई बेचैनी, कोई फैलते जाने की धुन, जिसे वो मजाक में मैडनेस जीन कहती हैं, क्या यही चीज हमें इतनी कामयाब भी बनाती है और इतनी विनाशकारी भी?
वाह, ये सारे उदाहरण सुनकर तो एक बहुत बड़ी और चिंताजनक तस्वीर उभरती है। तो अगर हम इस पूरी किताब के सार को कुछ मुख्य संदेशों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि इंसान अब एक भूवैज्ञानिक ताकत बन गया है। जियोलॉजिकल फोर्स।
मतलब
हमारे काम अब सिर्फ लोकल असर नहीं डालते, वो पूरे ग्रह के सिस्टम्स को बदल रहे हैं। क्लाइमेट, समंदर, जमीन, जीवन। इसी को वैज्ञानिक एंथ्रोपोसीन कह रहे हैं। हम चाहें या ना चाहें, हम इस ग्रह के ड्राइवर सीट पर हैं।
सही कहा। और दूसरा?
दूसरा संदेश है बदलाव की रफ्तार, अनप्रेसिडेंटेड स्पीड ऑफ चेंज। हम पर्यावरण को इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि ज्यादातर प्रजातियों को ढलने, मतलब एडेप्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा।
हाँ, एवोल्यूशन तो धीमा होता है।
बिल्कुल, एवोल्यूशन हजारों लाखों साल में होता है, और हम बदलाव ला रहे हैं सिर्फ दशकों में। ये तेजी ही आज इतने ज्यादा विलुप्ति का बड़ा कारण है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, प्रकृति की गति उतनी नहीं।
ठीक, तीसरा संदेश?
तीसरा है हर चीज का जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोसिस्टम्स। ये किताब बार बार दिखाती है कि प्रकृति एक बहुत नाजुक जाल है, एक धागा टूटने से पूरा जाल कमजोर होता है।
जैसे वो कोरल रीफ वाला उदाहरण।
हाँ,
कोरल रीफ खत्म होते हैं तो उन पर निर्भर हजारों मछलियां और दूसरे जीव भी खत्म हो जाते हैं। ये हमारे शहरों पर भी लागू होता है। अगर गौरैया कम हो रही है तो उसका असर कीड़ों की आबादी पर और शायद पौधों पर भी पड़ रहा होगा। सब कुछ जुड़ा है।
बात तो सही है।
और चौथा संदेश?
चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो है मानव स्वभाव का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन नेचर।
वो कैसे?
हमारी होशियारी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा सहयोग करना, इन्हीं गुणों ने हमें इतना सफल बनाया, पर शायद यही गुण, मतलब और ज्यादा पाने की इच्छा, अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने की जिद, यही हमारे विनाशकारी असर का कारण भी है। ये एक पहेली जैसी है।
हाँ, ये विरोधाभास वाकई गहरा है। किताब में ऐसी कई बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं।
बिल्कुल, जैसे उनका ये कहना कि हम इंसान जाने अनजाने में ये तय कर रहे हैं कि भविष्य में एवोल्यूशन के कौन से रास्ते खुले रहेंगे और कौन से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई।
हाँ, जिसके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। आज हम जो पेड़ लगा रहे हैं या काट रहे हैं, जो नदियां साफ कर रहे हैं या गंदी कर रहे हैं, वो तय करेगा कि 100 साल बाद कौन से जीव यहाँ रह पाएंगे।
और वो मिसाल की दूसरी प्रजातियों को खत्म करके हम असल में उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर खुद बैठे हैं।
हाँ, क्योंकि हम हवा, पानी, भोजन, क्लाइमेट, इन सब के लिए प्रकृति पर ही तो निर्भर है। हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी, लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इससे अलग या ऊपर नहीं।
कोलबर्ट ये भी कहती हैं कि अगर कोई ध्यान से देखे तो एंथ्रोपोसीन के निशान हर जगह हैं।
कहाँ?
मौसम के बदलते पैटर्न में, शहरों के फैलने में, नदियों के हाल में, यहाँ तक कि हमारे आसपास दिखने वाले पक्षियों और तितलियों की संख्या में। ये सब उसी बड़ी कहानी के छोटे छोटे हिस्से हैं। बस हमें अपनी आँखें और दिमाग खुला रखने की जरूरत है।
और वो आंकड़े, वो वाकई चौंकाते हैं। जैसे दुनिया के एक तिहाई कोरल रीफ खतरे में है।
हाँ,
एक तिहाई साफ पानी के मोलस्क, एक चौथाई मैमल्स यानी स्तनधारी जीव,
और पक्षी
छठा हिस्सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। ये सिर्फ दूर अमेज़न या आर्कटिक की बात नहीं है, ये हमारे आसपास भी हो रहा है। ये दिखाता है कि समस्या कितनी फैली हुई है।
तो अब सवाल ये है कि ये सब जानकर क्या किया जाए? क्या ये किताब कोई उपाय बताती है?
देखिए, ये कोई कैसे करें वाली गाइड बुक नहीं है, लेकिन ये हमारी सोच को बदल सकती है। सबसे पहले तो ये हमें जागरूक बनाती है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस।
वो कैसे?
हम जो खरीदते हैं, खाते हैं, जैसे घूमते हैं, इन सब का कहीं ना कहीं कोई असर होता है। ये किताब हमें अपने छोटे छोटे कामों को उस बड़ी तस्वीर से जोड़ने में मदद करती है। जैसे प्लास्टिक कम क्यों करें, क्योंकि वो टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बनता है और समंदर में पहुंचकर जीवों को नुकसान करता है।
और दूसरा?
दूसरा, ये हमें ज्यादा जानकार नागरिक बनाती है, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। जब हम क्लाइमेट चेंज पॉलिसी या किसी जंगल को बचाने या नदी को साफ करने की बात सुनते हैं,
हाँ,
तो हम समझ पाते हैं कि ये क्यों जरूरी है। हम बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, उन कोशिशों का साथ दे सकते हैं जो पर्यावरण का ध्यान रखती हों।
तीसरा फायदा?
तीसरा, ये हमें थोड़ी विनम्रता सिखाती है, ह्यूमिलिटी। हम इंसान इस ग्रह पर लाखों प्रजातियों में से सिर्फ एक हैं। हाँ, हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी शक्ति विनाश भी ला सकती है। ये हमें दूसरी प्रजातियों के जीने के अधिकार का सम्मान करना सिखाती है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
उनका अपना वजूद है।
हाँ, और शायद सबसे जरूरी, ये हमें प्रकृति की कदर करना सिखाती है, अप्रिशिएशन। जो बचा है वो कितना कीमती है,
चाहे वो शहर का कोई पार्क हो या बालकनी में आने वाली चिड़िया।
बिल्कुल, ये हमें उस खूबसूरती और जटिलता को देखने की नज़र देती है जो शायद हम रोज की भागदौड़ में भूल जाते हैं। शायद ये हमें प्रकृति से फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित करे।
सही कहा। तो ये सब सोचने के बाद आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख या सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए शायद वो जुड़ाव वाली बात सबसे शक्तिशाली है, इंटरकनेक्टेडनेस। कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, इंसान, जानवर, पौधे, हवा, पानी, जमीन। एक कड़ी टूटती है तो पूरा सिस्टम कैसे हिल जाता है। कोलबर्ट कोई आसान जवाब नहीं देती, क्योंकि शायद है भी नहीं। लेकिन वो हमें मुश्किल सवालों का सामना करने की हिम्मत देती हैं, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाती हैं जो मुझे बहुत परेशान करता है।
क्या सवाल?
कि ये जानते हुए कि हम क्या कर रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां हमारे इस दौर के कामों को कैसे देखेंगी। ये सवाल वाकई सोने नहीं देता।
मेरे लिए भी शायद सबसे बड़ी बात ये एहसास है कि हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर जी रहे हैं जहां हमारे आज के एक्शन आने वाली सदियों के लिए धरती पर जीवन का नक्शा तय कर रहे हैं। ये जानना कि विलुप्ति जैसी चीज को समझने में ही हमें सदियां लग गईं, कुविए का काम याद आता है, और अब जब हम समझ रहे हैं कि हम खुद इसका कारण बन रहे हैं, ये बात बहुत भारी लगती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था।
बिल्कुल।
लेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।